खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपका। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपका। प्यारे प्रभु कोई कहां हमारा आपका। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली।
ओम शांति। हम सब बाबा के होली हंस। जब से बाबा के बने वहीं से हमारे भाग्य की रेखा दिन प्रतिदिन उज्जवल होती जा रही है। बाबा का बनने में ही हमारा सौभाग्य परम भाग्य समाया हुआ है, किंतु इस भाग्य की रेखा को और गहरा और बड़ा बनाने की जो कलम है, बाबा कहते हैं वो हम सबको बाबा ने दी हुई है। देखो हम सब कितने भाग्यशाली हैं दिल्ली वाले, और अभी तो हम सभी सेवाधारी यहां पर उपस्थित हैं, जो हम सभी को ये सेवा करके, जो अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की सेवाएं यहां पर हैं। जब हम वहां से निकल रहे थे तो हम अपने सेंटर में सभी बहन भाइयों को बता रहे थे कि हमें तीन प्रकार की सेवाएं मधुबन में जाके करनी होती हैं। एक तो हम सब बहुत सारे बहन भाई बाबा से मिलने के लिए एकत्रित होते हैं, तो बहुत सारे जब बहन भाई आते हैं तो मधुबन के जितने स्टाफ है उसके साथ हम सबको मिलकर काम करना होता है। तो हम सब दिल्ली वाले सारे मधुबन के अंदर समर्पित हो जाते हैं, और जो जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हम फिजिकली शरीर द्वारा वहां पर प्रेजेंट रह करके सेवा करते हैं। दूसरा, बाबा ने जब इस धरती पर आना हुआ बाबा का, तो सबसे पहले बाबा ने हम सबको योग सिखाया कि योग ही एक ऐसा माध्यम है जो विश्व परिवर्तन के लिए आवश्यक है। तो दूसरी सेवा हम सभी बच्चों को विशेष रूप से यहाँ के जो वातावरण है उसको और चार्ज करने के लिए हम सभी को योग लगाना, ये हमारी विशेष, जो हम सेवाधारी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारी ये विशेष सेवा है। तीसरा, हमारे इतने सारे कॉम्प्लेक्स बाबा ने जो यहाँ बनवाए हैं, शांति वन है, पांडव भवन है, ओरिजिनल पांडव भवन, फिर ज्ञान सरोवर, फिर शांति वन, उसके अलावा हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल, फिर पीस पार्क, इधर म्यूजियम, ऐसे हमारे, और उसके जो हमारा विशेष हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां पर ये सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ पर जितने भी बहन भाई रहते हैं, तो इन सब के लिए हमें एक वर्ष में कम से कम एक बार अच्छी तरह से इनकी सेवा के लिए, जो यहाँ पर रहकर पूरा साल सेवा कर रहे हैं, तो हम सबको कुछ धन भी यहाँ पर समर्पित करना चाहिए, ऐसा हम अपने लिए विशेष सेवा समझते हैं। तो इन तीनों प्रकार की सेवा द्वारा, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं करने से ही प्राप्त होता है, तो हम सब जो यहाँ पर बाबा के बच्चे उपस्थित हुए हैं, तो तीनों प्रकार की सेवा करके हम अपने भाग्य की रेखा को जितना अधिक बड़ा करना चाहें हम कर सकते हैं। भक्ति में हम लोग गाते थे, जैसा तुम बीजते हो वैसा तुम पाते हो, बोए बीज बबुल के तो आम कहां से खाए। हमें अपने भाग्य की रेखा को बहुत ऊंचा बनाने के लिए बहुत आवश्यक है हम अपने आप को देखें कि अमृत वेले से लेकर रात तक जो हमारी दिनचर्या है, इस दिनचर्या में जो हमको तीनों ऑप्शंस हैं, एक मन, दूसरा वचन और तीसरा कर्म, मन वचन कर्म द्वारा मैं क्या बीजती हूं, एज यू सो सो शैल यू रीप। साइंस ने भी हमको यही समझाया, जो भी कर्म आप करते हो उसी का ही प्रतिफल उतनी ही तरीके से, उतनी ही जैसा आपने किया है वैसा का वैसा आपके पास वापस आता है। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, मन, वचन और कर्म, इन तीनों द्वारा हम जो करते हैं सो हम पाते हैं। बाबा ने हम सब बच्चों को ये समझाया है, बताया है कि बच्चे आप जो इस शरीर के अंदर आत्मा हो, तो हम सब आत्मा जानते हैं कि पहले कोई भी बात हम सोचते हैं, सोचने के बाद बुद्धि निर्णय लेती है, फिर वो मेरा मन का विचार जब कर्म में आ जाता है तो यही मेरा संस्कार बनता है। अच्छे कर्म से अच्छा संस्कार और बुरे कर्म से बुरा संस्कार। और बाबा ने हमको ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि आज तक, अभी तक, आज की डेट, आज 27 है और लगभग 6:15 बज चुके हैं, तो आज तक जो भी मैंने सुख प्राप्त किया है वो मेरे ही किए हुए कर्म का फल है। और रही हुई मेरी जिंदगी जो मेरे हाथ में है, अब मुझे आज डिसाइड करना है कि मुझे अपनी रही हुई जिंदगी में कितना अधिक सुख चाहिए। जितना अधिक सुख मैं उम्मीद करती हूं अपने लिए, मुझे आज दृढ़ निश्चय करके ये तीन ऑप्शन जो मेरे पास हैं, पहला मन, दूसरा वचन और तीसरा कर्म, ये तीनों द्वारा मुझे बोना है। क्या बोना है? सुख भोगना बोना है। सुख बोऊंगी तो मुझे सुख मिलेगा। अगर मैं सुख नहीं बोऊंगी तो बाबा भी अगर चाहे कि मैं इस बच्ची को सुख दे दूं तो बाबा नहीं दे पाएंगे। बाबा ने हमको सारे ज्ञान का रहस्य एकदम खोलकर सुना दिया है। बच्चे आत्म अभिमानी बहो, बाबा को याद करो। क्यों? क्योंकि आत्म अभिमानी बनने से ही हमारा संबंध बाबा से जुटेगा, और बाबा से जब हमें शक्तियां प्राप्त होंगी तो ये जो तीन ऑप्शन मेरे पास हैं, पहला मन, दूसरा वचन और तीसरा कर्म, इन तीनों में मैं कुछ दे पाऊंगी, क्योंकि जो मैं देती हूं वही प्राप्त करती हूं। आप देखें कि मेरे मन में जो विचार आते हैं वो सारे वातावरण के अंदर प्रकंपित होते हैं। तो जो मैं करती हूं, श्रेष्ठ विचार करती हूं, दूसरों के लिए शुभ भावना रखती हूं, तो मेरी शुभ भावनाएं फिर प्रतिबिंबित होकर के मेरे पास आती हैं। आप देखेंगे कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तो जब बातचीत करते हैं और अगर हम प्रेम से करते हैं और उसमें जो शब्द हम बोलते हैं रूहानियत वाले शब्द बोलते हैं, तो उसका असर क्या होता है? दूसरे पर उसको सुख मिलता है, और जब उसको सुख मिलता है तो वो भी हमको प्यार से बोलता है, इज्जत से बोलता है। तो पहला जो मेरे पास ऑप्शन था मन, मैंने अच्छा सोचा और फिर मैंने जब अच्छे बोल बोले तो ये मेरा किस्मत बनती जा रही है। अब जब मैंने अच्छा बोला तो जरूर मुझे जो सामने वाले हैं, जो भी, चाहे नॉन हैं, बीके हैं या नॉन बीके हैं, तो हरेक के साथ जब मैं प्यार से बोलती हूं तो उसका फल मुझे वापसी में प्यार मिलता है। बड़ों के द्वारा मुझे प्यार मिलता है, साथियों के द्वारा मुझे स्नेह मिलता है, और जो अपने छोटे हैं उनके द्वारा मुझे सम्मान मिलता है। है एक ही भावना लेकिन शब्द अंतर हो जाता है। लेकिन इसमें विशेष बात एक ध्यान रखनी होती है कि जब हम सभी अपने मन के अंदर ये संकल्प लेकर चल रहे हैं कि मुझे सुख चाहिए, तो जब मैंने प्यार से बोलना शुरू किया, और कभी कभी आप भी जीवन में अनुभव करते होंगे कि हम प्यार से बोलते हैं लेकिन दूसरे का अगर स्वभाव थोड़ा सा उतना स्नेही नहीं है, या बाबा ने जो हमको ज्ञान का राज बताया है उस अनुसार से वो उतनी इज्जत से या प्रेम से नहीं बोलते हैं। बहुत सारों के अनुभव होंगे ना ऐसे, कि हम तो प्यार से बोलते हैं लेकिन वापसी में जो हमें मिलना चाहिए, कर्म का सिद्धांत था, जो आप बीजते हो सो पाते हो। लेकिन जो आज मैं प्यार से बोल रही हूं, ये मैंने अभी बीज बोया है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका फल मुझे अभी अभी मिल जाए। आपने देखा होगा ये भी कहावत मशहूर है कि दादा बोए पोता खाए, ये भी बीज है एक, दादा बोता है और पोता खाता है। कहने का मतलब है कि उस बीज का फल कुछ समय के बाद मिलता है, तो उसके लिए अगर हम अपने भाग्य की रेखा को, सौभाग्य को बहुत ऊंचा बनाना चाहते हैं, बढ़िया बनाना चाहते हैं, और आज मैं जब प्यार से बोल रही हूं और मुझे वापसी में प्यार नहीं मिल रहा, सामने से वो इज्जत नहीं मिल रही, तो मुझे ये बात याद रखनी है। कौन सी बात? कि जो मैंने किया था, जो पिछले समय पर मैंने जो किया था, ये उसका प्रतिफल है। जो मैं प्यार से बोल रही हूं, मैं इज्जत दे रही हूं, और इज्जत को देने का दूसरा जो ऑप्शन है एक्शन, उसमें हमें दूसरों को क्या करना होता है? सहयोग देना होता है। तो मैं प्यार से भी बोल रही हूं और सहयोग भी दे रही हूं, लेकिन मुझे मिलना चाहिए प्यार और सहयोग, लेकिन आज नहीं मिल रहा। तो मुझे याद रखना है कौन सी बात? कि जो मैंने पहले बीजा था उसके बदले में आज मुझे प्यार के बदले में वो इज्जत नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं कटुता मिल रही है। सहयोग के बदले में नॉन कोऑपरेशन मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है। और ऐसे में ज्यादातर ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है, हम सोचने लगते हैं कि प्यार का जमाना तो है ही नहीं, इज्जत नहीं, आजकल तो डंडे से काम लेने से बात बनती है। लेकिन अगर ऐसा सोच है तो हम अपने भाग्य की रेखा को मिटा रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। इसके लिए हमें एक गुण को डेवलप करना है, और वो गुण है धैर्यता का। कि जब हम प्यार का बीज बोते हैं, प्यार से बोलते हैं, और दूसरा एक्शन के द्वारा दूसरों को सहयोग देते हैं, तो अब हमारी उम्मीद हो जाती है सामने से प्यार और सहयोग जब नहीं मिलता है तो याद करना है कि आज जो मैं बीज रही हूं इसका फल ड्यू टाइम में, थोड़े टाइम में आएगा। और दूसरी बात, अगर आपने प्यार से बोला और सामने से वो प्यार नहीं मिला, तो आप याद रखिए हम दो जने आपस में बात कर रहे हैं, मैं प्यार से बोल रही हूं और सामने वाला मुझे प्यार से नहीं बोल रहा है, लेकिन तीसरा जो ऑब्जर्वर है, जो हम दोनों को देख रहा है, वो क्या करेगा? किसके प्रति उसकी इज्जत डेवलप होगी? किसके प्रति उसको मन के अंदर श्रद्धा क्रिएट होगी? जो प्यार से बोल रहा है, जो इज्जत से बोल रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने भाग्य की रेखा को बड़ा कर रहे हैं। इसलिए आज यदि मैं आज अपने आप को, जो मेरी रही हुई जिंदगी है, इस संगम युग का जो सुंदर सौभाग्य है, इसको और अगर मुझे बड़ा बनाना है, तो आज मुझे अपने साथ ये दृढ़ संकल्प करना है कि मैं जो कुछ भी श्रेष्ठ करूंगी वो अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के। कौन सी शर्त? कि मुझे प्यार के बदले में प्यार मिले अभी का अभी, ऐसा ये वाला सोच मुझे खत्म कर देनी है। और क्या याद करना है? जो मैं कर रही हूं इसका फल अवश्य ही मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो जरूर मिलेगा। इसलिए हमको भक्ति में समझाया गया था, नेकी कर कुएं में डाल। क्यों कुएं में डाल? क्योंकि उसका फल आएगा, लेकिन आने से पहले जो हमारी उम्मीद है वो हमारे धैर्य की शक्ति को कहीं खत्म ना कर दे। हालांकि कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि जो आप करते हो सो आप पाते हो, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो आज ही पाते हो। ये बात इसके साथ ऐड नहीं की गई है, सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जो आप करते हो सो आप पाते हो। और हमने मन के अंदर ये पक्का कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर हमारे मन में आता है, देखो हमने 4 बार प्यार से बात किया, 6 बार उसके साथ कोऑपरेट किया, कितना करें आखिर? कितना करें? जितना हम प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम आजीवन जितनी भी हमारी उम्र है संगम युग की, अगर हम उसमें पूरा ही सुख आनंद प्रेम शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज हम अपने साथ ये पक्का करें कि मेरे पास ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, मन वचन और कर्म, इन तीनों में जो पहला लेसन जो हमने यहां पर सीखा है कि शरीर को चलाने वाली मैं एक ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा हूं। और मैंने अपने साथ भी ये पाठ पक्का किया हुआ है, और जब मैं किसी को कोर्स कराती हूं तो यही बात याद दिलाती हूं कि हालांकि आत्मा में 7 गुण हैं, और क्योंकि पहले दिन जब कोई आता है तो हम उसको पक्का कराते हैं, आप एक ही याद कर लेना, उसको इजी भी लगता है, और मैंने भी ऐसे ही पक्का किया हुआ है कि मैं कैसी आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जब शांत स्वरूप आत्मा समझते हुए हम कर्म में आएंगे तो शांति के अंदर, शांत जब हम बोलते हैं तो दूसरे को स्वतः ही प्रेम की अनुभूति भी होती है, उस शांति में सुख की अनुभूति भी होती है, आनंद भी होता है, सब गुण एक दूसरे साथ इतने जुड़े हुए हैं। तो जब हम इस पहले लेसन को, जो प्रतिदिन बाबा भी हमें वाणी में पक्का कराते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव, कोई ऐसी वाणी नहीं होगी जिसमें बाबा ने हमको ये पहला लेसन रिवाइज नहीं करवाया है, क्योंकि ये लेसन घड़ी 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 भूल जाता है। तो आज पुनः अपने भाग्य की रेखा को बड़ा करने के लिए हम इस पहले लेसन को रिवाइज कर रहे हैं कि यहां बैठी हुई मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसलिए मैं जो सोचूंगी और उसके बाद जब कर्म में आऊंगी, निर्णय लेने के बाद कर्म में आऊंगी, वही मेरा भाग्य है। इसलिए अनकंडीशनली मैं प्रेम से व्यवहार करूंगी, मैं सदा दूसरों के साथ कोऑपरेट करूंगी, सभी के प्रति अनकंडीशनली, वो मेरे साथ मेरे प्रति शुभ भावना रखता है या नहीं रखता है, पर मुझे हर एक के लिए, चाहे हम सब यहां पर ब्राह्मण परिवार हैं या संसार के सभी जो नॉन बीके हैं, बाबा के बच्चे हैं, उन सब के प्रति मैं अनकंडीशनली सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखूंगी। इस तरह से जब हम कर्म में आगे आगे बढ़ते हैं तो हमारे भाग्य की रेखा आगे बढ़ना शुरू होती है। एक बात जो विशेष हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि जो हमारे आसपास हमारे कर्म के साथी हैं, उन कर्म के साथियों का सबका बाबा ने हम सबको पक्का कराया है कि जो हम सब आत्माएं हैं सबका रोल अलग अलग प्रकार का है। एक का जैसे शक्ल नहीं मिलती, मिलती है किसी की शक्ल, हम जितने भी बैठे हैं यहाँ पर हॉल में या अदरवाइज भी हम देखते हैं, सबकी शक्ल अलग अलग होती है। ऐसे ही सबके अंदर आत्मा तो पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु है, किंतु उनके अंदर जो संस्कार हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। इसलिए मुझे अपने साथ ये बात निश्चित रूप से पक्की करनी है कि दूसरे के जो संस्कार हैं, स्वभाव है, उनको देखते हुए मैं जो अपना शांत स्वरूप का जो गुण है उसको प्रैक्टिकल में यूज करना है। इस बारे में एक छोटी सी रेफरेंस मुझे याद आ रहा है कि एक बार, और हम सबको ऐसा ही करना है जो रेफरेंस अभी मैं आपके सामने पेश कर रही हूं, एक बार एक टीचर के दो शिष्य थे। उन्होंने दोनों शिष्यों को बहुत प्रेम से कैसे जीवन में जीना है वो कला सिखाई, और उसके बाद उनको टेस्ट करने के लिए दोनों बच्चों के हाथ में गुलदस्ता दे दिया, और गुलदस्ते में बहुत सारे फ्लावर्स थे, और टीचर ने ये कहा कि बच्चे आप इन फ्लावर्स को ले जाइए और रास्ते में जो जो आपको मिलते हैं उनको एक एक फूल देते जाइए, लेकिन ख्याल ये रखना फूल उसी को देना है जो सामने से आपको मुस्कुराता हुआ नजर आए। तो दोनों बच्चे निकल गए अपने टीचर की आज्ञा अनुसार। एक बच्चा एक घंटे के अंदर वापस आ गया, उसके सारे फ्लावर्स बढ़ चुके थे। तो टीचर ने पूछा, क्या आपके सारे फ्लावर्स बढ़ गए इतनी जल्दी? कहते जी। कहा टीचर ने, पक्का वही बात कंडीशन को ध्यान रखा था? कहता जी सर, मैं केवल उन्हीं को दिया ये फूल जो सामने से मुझे मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन दूसरा बच्चा दो दिन तक भी वापस नहीं आया, तो टीचर ने उसको बुला करके पूछा, क्या हुआ बच्चे, आप तो वापस नहीं आया अभी तक? तो उसने कहा, सर आपने कंडीशन इतनी टीडियस लगाई हुई है कि फ्लावर उसको देना है, फूल उसको देना है जो मुस्कुराता हुआ नजर आए। इस दुख भरी दुनिया में, कलयुग में कहां से ऐसे लोग मिलेंगे जो मुस्कुराएं? मैंने तो सारी गलियां छांट ली आसपास की, मुझे तो कोई भी नहीं मिला। तो ये बच्चा जो एक घंटे में वापस आ गया था, इससे पूछा, भाई आप कौन सी गलियों में गए थे? तो उसने कहा, सर मैं तो यहीं से जो निकला था, एक गली ये वाली और एक गली दूसरी वाली, 50 के करीब फूल थे, जितने लोग नजर आए सब मुस्कुराते हुए नजर आए, तो मैंने उनको ये फूल दे दिया और मेरा तो जो सेवा थी पूरी हो गई। तो उस बच्चे ने कहा, इस गली में तो मैं भी गया था पर मुझे तो कोई भी मुस्कुराता हुआ नजर नहीं आया। तो कहा कि ऐसे कैसे हो गया? तो उसने एक दो लोगों के नाम गिनवाए, कहा मुझे मिला तो था वो भी, मुझे फलाना भी मिला था जो आपको मिला था, लेकिन मुझे तो वो मुस्कुराता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो फिर से टीचर ने पहले वाले बच्चे से पूछा कि आपको ये जो व्यक्ति था कैसे मुस्कुराता हुआ मिला? तो उस बच्चे ने अपना अनुभव सुनाया और बताया कि सर मैंने एक काम किया, और वही काम आज से हम सभी को बाबा ने सिखाया हुआ है और वो करना है। तो कहा, क्या किया आपने? तो उस बच्चे ने कहा कि सर जो सामने व्यक्ति आता था, चाहे मेरी जान पहचान का था या नहीं था, जब मैं आगे बढ़ता था और सामने थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह जाता था तो मैं मुस्कुराना शुरू कर देता था, और मेरी मुस्कुराहट को देखकर जो नहीं जानने वाले थे वो भी मुस्कुरा के पूछते थे, क्या बेटे तुम मेरे को जानता है? तो उसने कहा, नहीं जानता नहीं हूं, लो लेकिन ये फूल लो, आज तो आज आपकी और हमारी जान पहचान हो गई। और प्यारे बाबा ने तो हमारी जान पहचान हर एक से पहले दिन से ही कराई हुई है, चाहे हम आपस में यहां बीकेस हैं, चाहे सिर्फ दिल्ली वाले हैं, पंजाब वाले हैं, किसी भी क्षेत्र वाले हैं, या नॉन बीकेस हैं जो अभी बाबा के इस परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन यूनिवर्सली तो हम सभी एक ही बाबा के बच्चे हैं। तो अगर भाग्य की रेखा को बड़ा बनाना है तो उसके लिए बड़े बड़े काम करने की जो करते हैं वो तो जरूर करें, लेकिन ये जो आवश्यक काम है, इनिशियल है, आवश्यक है, जरूरी है कि सभी आत्माएं उस ज्योति स्वरूप शिव बाबा के बच्चे हैं। किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी भाषा के हैं, उनके प्रति ये वाला भाव मन के अंदर जागृत हो। किसी भी बाबा के बच्चे को हम देखते हैं तो मन में ये आए, मैं भी शांत स्वरूप आत्मा हूं और ये भी शांत स्वरूप आत्मा है, यही सच्चा सच्चा मुस्कुराना है। बाहर की मुस्कुराहट तो दुनिया भी जानती है, लेकिन ये जो रियल अंदर से जो मुस्कुराहट है, खुशी है, अंदर की जो शांति है, ये बाबा हम सब बच्चों से उम्मीद करते हैं। ये हमारे भाग्य की रेखा को बड़ा बनाती है। जब अंदर से ये स्वीकार हो जाता है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और मैं शांति के सागर बाबा की संतान हूं, और सामने का ये जो बहन या भाई है, बच्चा है, बुजुर्ग है, जो भी है, ये भी आत्मा उस बाबा की संतान है, ये सोच स्वतः ही, जो आरंभ में हमने बात की थी, हमारा बोल बहुत स्नेही होना चाहिए, एंड दैट टू अनकंडीशनल। दूसरा क्या कर रहा है, ये सोच ही हमारे भाग्य को छोटा कर देती है। और आज तक जो मैंने अपनी भाग्य की रेखा को बड़ा बनाया था उसको मिटा देती है, क्योंकि जब ये सोच आता है, इसने तो ऐसा मेरे साथ नहीं किया, मैंने तो किया पर इसने नहीं किया, ये दूसरों को देखने से हमारा भाग्य, उसकी हाइट कम होती जाती है। अपने भाग्य की रेखा को बड़ा बनाने के लिए सबसे पहला ये सोच अंदर से डेवलप करना है, अंदर से जागृत करना है, जिसको बाबा कहते हैं प्रतिदिन इसको याद करना है कि मैं कौन हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर शिव बाबा की मैं संतान हूं। अब वापस जाने का समय आ चुका है, वापस चलना है, क्या लेकर चलना है, क्या लेकर आए थे? बाबा ने हम सबको पक्का कराया है कि हम सब बाबा के अनन्य संतान हैं। ये सोच मेरे बोल को प्रभावित करेगी, ये सोच मेरे व्यवहार को प्रभावित करेगी, और ऐसे समय पर मैं जो कुछ भी करूंगी वो मेरा भाग्य बहुत ऊंचा बनता जाएगा। ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मेरा भाग्य कैसा बन रहा है, स्वतः ही बनता जाएगा। दूसरी बात जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जो अभी एक दो दिन पहले बाबा ने वाणी में कहा था, मैं जो बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रहा हूं, जो ज्ञान सुना रहा हूं, जो आकर सेवा कर रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है, मैं तो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, ये मेरे लिए कोई, मैं कोई बड़ाई का काम नहीं कर रहा हूं। और दूसरी लाइन में बाबा ने कहा था, ऐसा कहकर बाबा अपनी बड़ाई को कम कर रहे हैं। ये वाला जो बाबा ने हमको सबक सिखाया, वो इसलिए सिखाया कि ज्यादातर जब भी हम किसी श्रेष्ठ कार्य को करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, चाहे हम योग लगाते हैं, चाहे जीवन परिवर्तन करते हैं, कई संस्कार स्वभाव को हम परिवर्तन करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, उसके बदले में हमारी ना चाहते हुए भी ये उम्मीद हो जाती है कि मुझे इसके बदले में ऐसा मिलना चाहिए। कहीं कहीं कंपैरिजन आ जाता है, इसको ऐसा मिला, ये मेरे साथ के हैं, या तो मेरे से भी अभी कल के आए हुए हैं, और मैं तो पुरानी हूं, पुराना या पुरानी जो भी हूं, तो जो भी मैंने किया है उसको हम सदा मन के अंदर रिसीव करके रखते हैं, एक्सेप्ट करके रखते हैं, याद करके रखते हैं, है ना, कि मैं जैसे सपोजिंग मैं 50 साल से ज्ञान में हूं और यहां ज्ञान में आने से पहले मेरे स्वभाव कैसे थे, मैंने कितना त्याग किया, खाने पीने के कैसे शौक थे, क्या क्या मैं करती थी, सब मैंने छोड़ दिया है। अब जो मैंने किया है उसके बदले में मेरी उम्मीद हो जाती है कि एक तो बाबा को कुछ करना चाहिए, दूसरा जिनके साथ मैं हूं, जिनके साथ मैं रहती हूं, उनको भी मेरे प्रति वो रिस्पेक्ट, वो मेरे प्रति वो भाव होना चाहिए। अब उसमें फिर वही प्रॉब्लम आता है, भाई किसी की दिल होती है तो मेरा रिस्पेक्ट कर लेता है, अपने अपने स्वभाव संस्कार हैं, और कोई नहीं करता है। जब कोई नहीं करता है और अंदर से मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि देखो मैं इतना अच्छा काम करने वाली, मैं इतनी त्यागी, मैं इतनी तपस्वी, और देखो यहां तो मेरे को कोई पूछने वाला ही नहीं, इनको कदर ही नहीं है मेरी, तो जब कदर नहीं होगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, सोच में क्या आ गया, नेगेटिविटी आ गई। अब सोच में नेगेटिविटी है तो अवश्य ही बोल के अंदर कुछ नीचे ऊपर होगा, और बोल गलत होते ही फिर व्यवहार में भी गलत होगा। अब जो मैंने 50 साल से अपने भाग्य की रेखा को बड़ा बनाया था, अब ये जो एक्सेप्टेंस है, मैं ऐसी, मैंने ऐसे किया, अब इसके बाद जो मेरा बोल है और मेरा जो व्यवहार है कैसा होगा, भाग्य को बड़ा बनाने वाला होगा, होगा नहीं होगा ना। हाँ, यहीं से मेरे भाग्य की रेखा फिर जो इतनी थी वो मिटना शुरू हो जाएगी। अब जो मुझे कोई देखेगा बोलते कहेंगे, अच्छा देखो 50 साल वाली कैसे बोल रही है, देखो कैसे करते हैं पुराने लोग ना, कैसे करते हैं। तो इन्होंने नहीं किया गलत, किसने किया, मैंने किया, पर क्यों किया, सिर्फ इतनी सी गलती कर ली। क्या गलती कर ली, कि जो कुछ मैं कर रही हूं उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने ये किया। लेकिन अगर मैंने किया तो क्या दूसरे पर एहसान थोड़ा किया, सपोजिंग मैं 50 साल से ज्ञान में चल रही हूं तो भाई आपके ऊपर एहसान थोड़ी ना है, मैंने अपना भाग्य बनाया है। फिर से हम पहली वाली बात याद करेंगे, जो कुछ मैं करती हूं मैं ही पाती हूं, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही हूं। मैंने जो कुछ आज तक किया, तन जमा किया, मन जमा किया, धन जमा किया, संस्कारों को परिवर्तन किया, किसके लिए, आपके लिए नहीं, किसके लिए, अपने लिए। जैसे हम सभी, सब परिवार वाले हैं, सब हम सब बहनें भी आश्रम पे भले रहते हैं, पर हम सब बैंक के अंदर कुछ ना कुछ जमा करते हैं, चाहे हर महीने या कई महीनों के बाद। लेकिन जो कुछ भी हम बैंक में जमा करते हैं, कैशियर वहां कोई भी हो पैसों को रिसीव करने वाला, लेकिन खाते किसके में जाता है, किसके खाते में जाता है, मेरे खाते में। और जब मुझे पैसों को चाहिए वापस तो वो वाला कैशियर भले चेंज हो जाए, उसकी पोस्टिंग किसी और बैंक में भी हो जाए, लेकिन जो मैंने जमा किया है विथ इंटरेस्ट, ब्याज सहित, वो मुझे प्राप्त होता है। मैं जब पैसे जमा करने गई थी तो वो मेरा पैसा उस कैशियर के लिए कोई एहसान नहीं था, वो मेरे क्रेडिट में, मेरे अकाउंट में वो जमा किया। इसलिए जो कुछ भी आज तक, टिल डेट, आज 7:45 तक जो कुछ भी मैंने किया है, चाहे ज्ञान में आने से पूर्व या ज्ञान में आने के बाद, मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने लिए किया है, अपने लिए किया है। और जो मैंने अपने लिए किया है तो फिर एहसान दूसरों को किस बात का, मुझे अपने लिए मैंने किया है, और ये सोच जो मैंने अपने लिए किया है ये मेरे व्यवहार को शांत और शीतल बनाने में मदद करेगा। जो बाबा ने हमको पक्का कराया कि बच्चे मैं कोई बड़ा काम थोड़ा कर रहा हूं, क्रमानुसार कर रहा हूं। बताओ बाबा इतने वर्षों से और पूरे ही कल्प में बाबा भले कहते हैं सत्युग त्रेता में मैं कुछ नहीं करता हूं, उसके बाद द्वापर युग से तो भक्ति मार्ग में भी बाबा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अभी तो बहुत अधिक कर रहे हैं हमारे लिए। हम इस बात को अच्छी तरह से अनुभव भी करते हैं, हर पल बाबा हमको मदद करते हैं, ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, प्रतिदिन समझाते हैं, हमारी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, कितनी क्षमा करते हैं, कितना रहम करते हैं बाबा हमारे ऊपर। बाबा इतना सब कुछ करने के बाद भी शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा ने भी हमको और दादियों ने भी हमारे सामने करके दिखाया है, सब कुछ करके कभी उन्होंने अपने को ऐसा जतलाया नहीं, एक्सपोज नहीं किया कि हमने ऐसे ऐसे किया, क्योंकि इससे हमारी भाग्य की रेखा को आगे बढ़ाने में हमको मदद मिलती है। तो इसलिए आज दूसरी बात हम ये पक्की करेंगे कि हमको हम जो कुछ भी आज तक कर चुके हैं वो सब कुछ मैंने अपने ही अकाउंट को, अपने ही भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए मैंने किया है। इसलिए जब भी मैं व्यवहार में आऊंगी तो इस लक्ष्य को अपने बुद्धि में रखूंगी कि मुझे अब भविष्य में भी अपने भाग्य को ऊंचा बनाना है तो मुझे क्या करना है। ये पुराने तक जो आज तक मैंने किया है वो मेरा जमा हो चुका है, अब और भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने बोल, अपने व्यवहार को जितना आज तक शांत और शीतल रूहानी बनाया था, आज अगर अधिक चाहिए और भाग्य की रेखा को और संपन्न, श्रेष्ठ, बड़ा बनाना है तो मुझे अपनी रूहानियत को, अपनी शांति को, अपनी नम्रता को और अधिक शीतल बनाना होगा। जैसे हम बाबा के व्यवहार को सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा जितने अपनी अव्यक्त स्थिति के और करीब आते गए, बाबा उतना अधिक उपराम होते गए, प्रकाशमणि दादी जी उतनी और उपराम होते गए। अपनी परम आदरणीय जानकी दादी जी को रोज हम सुनते हैं कितनी उपराम होती जा रही है, अपनी छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी बात भी एकदम ऐसे बताती हैं जैसे कि हमें लगता है बताओ इतनी बड़ी बात इतनी सभा में दादी कैसे सुना रहे हैं। दादी कल ही सुना रहे थे कि वो झाड़ के नीचे जो फोटोज जो लगाए गए थे, चित्र बनाया था, तो उसमें मेरा नहीं था तो मुझे ख्याल आया। इतनी बड़ी सभा में दादी अपनी गलती को ऐसे बताती हैं जैसे कि ये कोई बात ही नहीं है, अन्यथा कोई अगर ऐसे बताए तो हम कहेंगे बताओ तुम्हें कोई क्लास के अंदर ऐसा अनाउंस करना चाहिए था क्या। कितनी उपराम हो गए हैं, कितनी हर बात से ऊंचे हो गए हैं, ये कौन सी स्थिति है? उपराम स्थिति है। तो जब हमने आज तक जो कुछ किया है वो अपने लिए किया है तो हमारी मानसिक स्थिति, हमारा बोल, उसके अंदर बहुत सत्यता डेवलप होती जाएगी, यही हमारे भाग्य को और ऊंचा बना रही है। तो बाबा के हम सभी विशेष संतान, बाबा के बनकर हमें विशेष तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, अगर हम अपने भाग्य की रेखा को ऊंचा बनाना चाहते हैं। जो बचपन में जब मैं चौथी क्लास में पढ़ती थी तो मैं जब ये भी जब बात सुनाती हूं तो मुझे अपनी वो क्लासरूम भी साथ याद रहता है, तो उसमें कबीर दास जी का एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए, और उस मुहावरे के अनुसार से, कहावत के अनुसार से था कि उनको अपने आंगन में स्थान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि जो अपने प्रशंसक होते हैं वो केवल हमारी महिमा करते हैं, हमारी बड़ाई करते हैं, वो हमारी कमजोरियों को बयान नहीं करते हैं, और जब कमजोरियों को बयान नहीं करते हैं इसलिए जितनी हमको अपनी समझ है उस अनुसार से तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बहुत प्रशंसक होते हैं वो हमारी कमियों को नहीं बताते, वो केवल हमारी महिमा बताएंगे, आप बहुत अच्छे हो। तो इसलिए हमारी कमियों को ना तो हमारी जितनी समझ है उतना तो हमने समझ लिया, लेकिन बाकी जो हमारी गलतियां उनका हमें पता नहीं लग रहा। और जब गलतियों को पता नहीं लग रहा तो कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं जो हमारे भाग्य को ऊंचा बनने में कहीं विघन रूप बन रही हैं। लेकिन जो निंदक होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी गलतियों को एक्सपोज करते हैं, बताते हैं। इसलिए हम सदा ये कहते हैं, एक तो हमारे ज्ञान के अनुसार जितनी मेरे अंदर समझ है, जितना बाबा के ज्ञान को मैंने समझा है, ज्ञान तो बाबा ने बहुत दिया है, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूं उस अनुसार से मैं अपनी गलतियों को जानती हूं। लेकिन दूसरा, जो मेरे बारे में चर्चा होती है उसको मुझे जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ये मुझे सोच करके नहीं छोड़ना चाहिए, अरे ये लोग तो मेरे बारे में, मेरे है ही ना विरोधी, इसे मेरे बारे में सदा गलत ही कहते रहते हैं। उस पर हमें जो समाज की से है, समाज जो हमारे बारे में बोल रहा है उसके बारे में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, पीठ पीछे क्या बोलते हैं, सामने बोलने के साथ साथ मेरे बारे में पीठ पीछे क्या बोलते हैं। एक बार बाबा ने बहुत कुछ टाइम पहले बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि 75% अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो भी आप समझ सकते हो ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान रखोगे, अगर आपके बारे में बहुत सारे लोग गलत कह रहे हैं तो ये मत सोचो कि मैं तो ठीक ही हूं, ये इन लोगों का काम ही है मेरे बारे में गलत कहने का। तो उनके द्वारा आपको पता लगेगा कि हमें अभी अपने व्यवहार को, अपने बोल को और अपने संस्कारों को किस किस क्षेत्र में ठीक करना और आवश्यक है, क्योंकि वो जो गलतियां हैं वो हमारे भाग्य को और नीचे ले आती हैं। इसलिए समाज की जो रेपुटेशन मेरे बारे में है, तो स्पेशल इसीलिए पहले के जमाने में आपने देखा था कि जो राजा लोग होते थे वो जाते थे गुप्त वेश में, या कुछ लोगों को भेजा करते थे कि ये प्रजा मेरे बारे में क्या कहती है, ऐसा सोच करके पता करते थे कि हमारे बारे में लोग क्या बोलते हैं, और उस अनुसार से वो अपना परिवर्तन भी किया करते थे। तो इसलिए हम तीसरी बात इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि लोग हमारे बारे में जिन संस्कारों के बारे में, जिस व्यवहार के बारे में, या किसी बोल के बारे में या सोच के बारे में अगर मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो उस पक्ष पर भी, उस बात पर भी मेरा अवश्य ध्यान जाए। तो अगर हम इन तीनों तरीकों से अपने आप को इस ज्ञान मार्ग में, इस पुरुषार्थी मार्ग में, बाबा के बनने के बाद जो बाबा ने हमको बहुत अच्छा चांस दिया है अपने भाग्य को ऊंचा बनाने का, तो इन तीनों तरीकों से अगर हम अपने आप को चेक करके चेंज करते जाएंगे, परिवर्तन करते जाएंगे, तो जरूर हमारे भाग्य की रेखा दिन प्रतिदिन उसकी हाइट बहुत बढ़ेगी। और चौथी बात, इन तीन बातों के साथ साथ चौथी बात, और विशेष रूप से जो हम सब यहाँ पर बाबा के बच्चे विशेष सेवा अर्थ यहाँ पर आए हुए हैं, जो मैंने पाया वो आज मैं आपके सामने जरूर अपनी शुभ भावना व्यक्त करना चाहती हूँ। सवेरे से लेकर अमृत वेले से लेकर बाबा ने हमको इतना चार्ज, इतना शक्तिशाली एटमॉस्फेयर, हम सब एस्पेशली जो हम दिल्ली वाले आए हुए हैं, इतना अच्छा वातावरण हमको दिया है। माताएं भाई बहुत अच्छी तरह से इस बात को सुनेंगे, और हम सब को दादी ने और बाबा ने पक्का कराया हुआ है। अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने पक्का कराया था और दादियां भी हमको पक्का कराती हैं कि सवेरे 4 बजे से लेकर 8 बजे तक सुन रहे हैं सभी? अच्छी तरह सुन लीजिए। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक हम सभी को मौन में रहना है। पर बुरा मत मानना, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूं, कहीं गलती हो तो क्षमा भी चाहूंगी। सवेरे सवेरे इतनी आवाजें आती हैं, जब हम योग के लिए भी आते हैं, कभी आसपास हम देखते हैं, ट्रेन में भी देखते हैं, सवेरे सवेरे से ही हम सब में से बहुत सारे जो पुरुषार्थ पर पूरा इस वाले पहलू पर, अन्यथा तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, इस वाले पहलू पर उतना अच्छा ध्यान नहीं दे पाते। बाबा ने इतना चार्ज एटमॉस्फेयर हमें दिया और हम सेवाधारी या सेवाधारी बन करके आए, तो हमारा काम तो था इस वातावरण को और चार्ज करना, किंतु अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, ध्यान न देने की वजह से सवेरे सवेरे हमारा बोल उस चार्ज शक्तिशाली वातावरण को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। तो कल से लेकर आज तक जो हो गया अननोइंगली जो हम काम करते हैं, उसके लिए बाबा हमको क्षमा भी कर देते हैं। तो कल से लेकर और रात को भी सोने से पहले, जैसे हम सबको बाबा ने समझाया है कि रात को सोने से पूर्व हम जरूर बाबा को याद करके सोएं, और जहां जहां पर भी हम सबको सेवा मिली हुई है, हम बहुत रूहानी ढंग से, दिल्ली वाले सभी इतनी अच्छी तरह से इस सेवा को संपन्न करें, चाहे वो खाने की ड्यूटी वाले हैं, ट्रांसपोर्ट की ड्यूटी वाले हैं, या अनाज साफ करने की ड्यूटी है, बर्तन साफ करने की ड्यूटी, वॉट एवर इट इज, जो जो जिसको जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है। सवेरे तो विशेष 4 से 8 हम ध्यान दें ही, कि सारे दिन में भी चूंकि हम सेवाधारी हैं और यहां पर हम सभी अपने भाग्य की रेखा को बहुत ऊंचा बनाने के लिए आए हैं, तो अगर हम इस रूहानियत का विशेष ध्यान रखेंगे तो जरूर हमारा भाग्य जो है वो बहुत बहुत है, भी बहुत अच्छा, और जो 8-10 दिन यहां पर हमको मिले हैं सेवा के लिए, तो इसमें हमारे भाग्य और भी ऊंचा बनने में हमको एक बहुत अच्छा एक हाइट दे देगा, हमारी जो भाग्य की रेखा है वो बहुत ऊंची हो जाएगी। और लास्ट मैं ये कहना चाहती हूं कि शाम के समय पर, कल भी बहुत बार अनाउंसमेंट हो रहा था, और जो भी यहां पर हमको दिनचर्या के अनुसार से योग का प्रोग्राम, क्लास का प्रोग्राम दिया जाता है, कितना अच्छा हो कि उस अनाउंसमेंट से पहले ही हम सभी यहां पर उपस्थित हो जाएं, और उपस्थित होकर के, क्योंकि जब हम अनाउंसमेंट के बाद आते हैं तो एक होता है कहलवाकर करना और दूसरा होता है बिना कहे इशारे से समझ करके करना, और तीसरा है कहने के बाद भी ना करना, है ना। तो अगर हम पहले वाले स्तर में आते हैं कि बिना कहे ही अगर हम पहुंच जाते हैं, तो हम एक अच्छे सेवाधारी हैं। कहलवाकर करने से थोड़ा हमारे भाग्य की रेखा पुनः थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए, क्योंकि मधुबन माना भाग्य की रेखा को ऊंचा बनाना, तो परिवारों में जब हम रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे संसारिक सेवाएं जो बाबा ने दी हुई हैं उनको हम करते हैं, लेकिन यहां तो विशेष रूप से हम समर्पित होकर के सेवा के लिए आए हुए हैं, तो बिना कहे हमको जो दिनचर्या दी गई है उस अनुसार से हम अगर अवेलेबल रहेंगे तो जरूर हमारे भाग्य की रेखा आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से वर्तमान में भी, मधुबन के 10 दिन भी, और अपने जीवन का रहा हुआ काल भी, अगर इन बातों को जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की है आपके साथ शेयर किया है, आप भी अगर इसमें से जो ठीक समझें उसको अपनाएंगे, तो जरूर आप सब की हमारी ये भाग्य की रेखा बहुत बड़ी होती जाएगी, ऊंची होती जाएगी, और हम बहुत खुशनुमा जीवन बाबा के साथ अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।
प्यारे प्यारे